उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके साथ मैं उन सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी उन आशीषों को हम तक पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से और SMS के द्वारा भेजते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम अध्ययन करेंगे अय्यूब की पुस्तक उसके 33 अध्याय से और हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का दास अय्यूब अपने आप को धर्मी ठहराता है और तब परमेश्वर का दास किस प्रकार से जवाबों का सामना करता है। और इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि एलीहू उसे इसका जवाब देता है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 18 पद से लेकर के 22 पद तक। लिखा हुआ है, वह उसके प्राण को गढ़े से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी तो होती ही है, वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य की स्थिति क्या है। जब मनुष्य अपने जीवन में घिर जाता है तब परमेश्वर की ताड़ना उस पर किस प्रकार से होती है। हम आगे देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 29 और 30 पद में। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ दो बार क्या वरन तीन बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उज्याले का प्रकाश पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर मनुष्य को ताड़ना द्वारा समझाता है। वह ताड़ना इसलिए करता है कि उसे या उन्हें अधोलोक में जाने से बचा ले। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं और हम इसे बुरा समझते हैं, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 31 से 33 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वासियों के साथ आज भी ऐसा ही करना चाहता है। हमें इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3-5 पद के अनुरोध का पालन करना चाहिए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया है कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की है कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। अब पद 11 को देखें, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उनको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हमारे स्वर्गीय पिता की ताड़ना को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, हम उसे तुच्छ समझ सकते हैं, जैसे कि उसका हाथ और उसकी वाणी उसमें ना हो। दूसरा, हम उसके कारण अचेत हो जाएं, यह हमारी पराजय होगी। प्रसंगवश अय्यूब को ये दोनों अनुभव प्राप्त हुए, अब हम क्या करें? तीसरी बात है, हम इसके अभ्यास के लिए आदि हो जाएं, जिससे कि हम जीवन में धार्मिकता के फल उत्पन्न करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनों पर कष्ट आने देता है और अपने प्रत्येक पुत्र की ताड़ना करता है। अय्यूब के साथ जो भी हो रहा था उसमें परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर अपने उद्देश्य की महान पूर्ति अवश्य करेगा। जी हाँ, वह जिससे प्रेम करता है वह उसे ताड़ना भी देता है। हम परमेश्वर की ओर से देखते हैं कि परमेश्वर दुष्टता कभी नहीं करता। अध्याय 34 में हम एलीहू की बातें सुनकर आश्चर्य करते हैं कि उस युग के युवक में ऐसी आत्मिक अंतर्दृष्टि होगी। जी हाँ, वह इस विषय में परमेश्वर का पक्ष ले रहा है। अब तक परमेश्वर दूर था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर या तो अय्यूब को पाप का दंड दे रहा था। यदि अय्यूब के जीवन में पाप नहीं था तो वह अन्याय कर रहा था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि परमेश्वर अय्यूब को एक महापापी सिद्ध करना चाहता था, परंतु परमेश्वर के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, जैसा हम आगे देखेंगे। मेरे प्रियो, यदि अय्यूब के मित्र उसे समझा पाते कि परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहा था कि उसके अभिमान का निवारण करे, न कि उसके पाप का दंड दे, वह उसे वहां लाना चाहता है जहां वह परमेश्वर पर भरोसा रखे और बालक शामुएल की नाई वह कह पाए। पहला शामुएल 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अय्यूब अपने बचाव में ऐसा व्यस्त हो गया था कि वह परिस्थितियों, मनुष्यों, सभा के लुटेरों, आंधी, शैतान आदि परमेश्वर के साधनों पर ध्यान नहीं दे पाया कि परमेश्वर उनके द्वारा उसे अनुग्रह से पूर्ण बुद्धिमानी के अंत की ओर ला रहा है। परमेश्वर की दया का यह प्रदर्शन था, उसकी करुणा सदा की है। अय्यूब यह सब नहीं देख पाया और परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि परमेश्वर हम विश्वासियों के जीवन में भी काम करता है। हम मनुष्यों, वस्तुओं और परिस्थितियों में उलझकर रह जाते हैं और अपने जीवन के संदर्भ में उन पर विचार करने लगते हैं, अपेक्षा इसके कि परमेश्वर संगति में रहे। जी हाँ, हम अपनी परिस्थितियों के पार नहीं, उनके अधीन रहते हैं। अतः परिस्थितियां हमें दबा देती हैं और हम रोते ही रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। मेरी सेवा में परमेश्वर का एक महान भक्त मेरा मित्र था। वह कहता था कि दोस्त, आपकी समस्या यह है कि आप परिस्थितियों के अधीन निर्वाह कर रहे हैं, उनके परे नहीं। यद्यपि वह चुटकी भी लेता था, परंतु उसकी बात में सच्चाई थी। जी हाँ, परमेश्वर ने कुछ लोगों को कैंसर का रोगी भी होने दिया है जो परमेश्वर के भक्त थे। अब मैं उसमें उसका उद्देश्य देखता हूँ। मुझे गलत न समझे, मैं धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। कैंसर के लिए वे लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, परंतु कुछ हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं जो कैंसर से पीड़ित थी और बहुत वर्षों तक कठिनाइयों का सामना कर रही थी। परिवार के सदस्य और जो भी उसे मिलने के लिए आते थे उसे देखकर दुखित होते थे, परंतु वह बहन दूसरों को जो उसके पास मिलने के लिए आते थे उन्हें सांत्वना देती थी और उनसे कहती थी कि आप दुखी मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वह इसलिए कह पाई क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा को समझ रही थी और एक समय आया वह प्रभु के पास हंसते हुए गाते हुए चली गई। मेरे मित्रों, यह बहुत ही कठिन समय होता है, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि इस प्रकार की बीमारी हम में से किसी के पास है तो हम चाहेंगे कि हम इसे मुक्ति पाएं। जी हाँ, यदि मेरे वश में ये सारी बातें हो तो अगले ही पल मैं इससे मुक्ति पा लूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं इसे अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त समझ पाता हूँ। आज मुझे और आपको इसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए भला क्या है। जी हाँ, जब हम परिस्थितियों को अपने और परमेश्वर के बीच में आ जाने देते हैं, तब परमेश्वर बाहर हो जाता है और हम उसकी उपस्थिति के बोध से वंचित हो जाते हैं। हम ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहाँ मन की शांति की अपेक्षा चिंताएं और निराशा होती है, और तब हमें पिता के प्रेम पूर्ण हाथ की अनुभूति भी नहीं होती। जी हाँ, हम कुंठित, अधीर, चिड़चिड़े और दोष ढूंढने वाले बन जाते हैं। हम परमेश्वर से दूर और उसके संपर्क से बाहर हो जाते हैं। हम सब परिस्थितियों में परमेश्वर का हाथ नहीं देख पाते। वह तो सदा ही हमें मन की दीनता और नम्रता द्वारा अपने निकट लाना चाहता है। यह परमेश्वर का आपके और मेरे जीवन में जो प्रयास है उसका अंत है। मेरे प्रियो, एलीहू अय्यूब के लिए मानवीय सेवा का अंतिम प्रयास था। अब अय्यूब परमेश्वर के सीधे हस्तक्षेप का अनुभव करेगा। इसका उस पर 3 गुना प्रभाव भी पड़ेगा। इससे परमेश्वर के साथ, अपने मित्रों के साथ और स्वयं के साथ संबंधों में परिवर्तन आएगा। मेरे मित्रों, हम सबको अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करेगा। परमेश्वर को ऐसा करने में बुरा नहीं लगता, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के समक्ष दीन बनते हैं कि वह हमें काम में ले। परमेश्वर इस उद्देश्य के निमित्त हमारी ताड़ना करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी को लेता है, उसको सानता है और जब वह चक्के पर उसको रखता है, उससे अलग अलग बर्तन बनाता है। उसमें से कुछ बर्तन टूटते हैं और कुछ अच्छे काम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर मेरा और आपका सृष्टि करता है। वह मुझे और आपको अपने अनुरूप में ढालना चाहता है। इसके लिए कभी कभी मुझे और आपको ताड़ना भी देता है, ताकि हम उसके निकटता में बने रहें। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि श्रोताओं में से एक युवक उनका अर्थात अय्यूब के सामने उनका विवाद सुनकर अपने विचार को प्रकट करने आया है। वह बुद्धिमान था और परमेश्वर को मान दे रहा था। आज भी कई बार हम ऐसे जवानों को देखते हैं जो बुद्धिमत्ता से परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आइए देखें, एलीहू आगे कहता है अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, फिर एलीहू यूं कहता गया, हे बुद्धिमानो मेरी बातें सुनो और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ। अब एलीहू अय्यूब के मित्रों को संबोधित करता है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 34:3 में, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। क्या ही उत्तम बात है, हम खाने की वस्तु को जीभ से चखते हैं और कानों से सुनकर बातों को परखते हैं। हम संगीत सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब हम बुरी बातों को सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, या सच्चाई या खरे बातों को सुनते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अय्यूब 34:4 में लिखा है, जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में समझ बूझ लें। हम अच्छी भोजन वस्तु को चखना पसंद करते हैं तो हमें अच्छी बात सुनना भी अच्छा लगे, इसलिए अच्छी बातों को अवश्य ही चुन कर सुने। अय्यूब 34:5 में लिखा है, क्योंकि अय्यूब ने कहा मैं निर्दोष हूं और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। ध्यान दीजिए, अय्यूब कह रहा था कि वह एक धर्मी व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे न्याय नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अन्यायी है। मेरे प्रियो, क्या यह ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर अन्यायी हो? मैं तो नहीं समझता और मैं कभी कह भी नहीं सकता, लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की बातों को आज भी करते हैं। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ, मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब का मानना था कि उसका रोग असाध्य था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे ऐसा दंड मिले। अय्यूब 34 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है। मेरे मित्रों, अय्यूब परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ समझ रहा है। उसका कहना था कि परमेश्वर को अधिकार नहीं कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करे। इस स्वभाव के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया है। जी हाँ, वह परमेश्वर की ताड़ना से निराश हो रहा था। हमें परमेश्वर की झिड़कियों से निराश नहीं होना है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अच्छे उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही ऐसा करता है। वह इसलिए नहीं करता कि वह मुझसे और आपसे नफरत करता है या मुझे और आपको नाश करना चाहता है, परंतु वह मुझे और आपको ऐसे अवसर प्रदान करता है ताकि हम अपने आप को झांक कर देखने पाए कि मैं कहां गलत हूं और फिर से हम परमेश्वर की ओर मुड़कर आ जाएं। अय्यूब इस बात को नहीं समझ पा रहा था। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। अब अय्यूब स्वर्ग के बाहर उपस्थित प्रदर्शनकारियों के साथ हो गया था। वह अधर्म का काम करने वालों की संगति में था और दुष्टों की संगति में चल रहा था। यह ऐसा था जैसे कि वह हाथ में पोस्टर लिए हुए चल रहा था जिस पर लिखा हो, परमेश्वर गलत है, मैं सही हूं। अनेक मनुष्य ऐसा ही करते हैं। अय्यूब परमेश्वर के विद्रोहियों के साथ हो गया था। मेरे मित्र, मैं नहीं समझता कि आप किस प्रकार का पोस्टर अपने हाथ में लिए हुए चल रहे हैं, परमेश्वर गलत है, मैं सही हूं, या आप ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, परमेश्वर सही है, मैं पापी हूं, परमेश्वर उद्धार देने वाला है। आज आपके हाथ में कौन सा पोस्टर है? क्या आज आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के उन पापमय जीवन की गंदगियों से बाहर आएं? यदि हाँ, तो मैं समझता हूं कि आपको भी अपने हाथ में पोस्टर लेने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मैं पापी हूं। जी हाँ, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखें। आगे अय्यूब की पुस्तक 34 उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। ध्यान दीजिए, उचित होता कि अय्यूब कहता, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और एक अच्छा बच्चा होने के कारण मुझे संडे स्कूल से पदक मिलना चाहिए, बड़े दिन पर मैं परमेश्वर से आशा करता हूं कि वह मेरे जुराब में अच्छा सा उपहार रखे। परंतु परमेश्वर ने तो राख डाल दी, परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अय्यूब का स्वभाव ऐसा ही था। आज भी अनेक विश्वासियों का स्वभाव भी ऐसा ही है। मैं संडे स्कूल के एक बच्चे को स्मरण करता हूं। जब संडे स्कूल के टीचरों ने बच्चों की प्रतियोगिता ली, उसमें से जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए या अच्छे प्रदर्शन किए उन्हें इनाम मिला, और उस बालक को कुछ भी इनाम नहीं मिला, तो वह रोने लगा और कहने लगा कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी बच्चों के समान हो जाते हैं। हम इस बात को समझने से इनकार कर देते हैं कि मैं उस भाग में उत्तीर्ण नहीं हुआ हूं, इसलिए मुझे इनाम नहीं मिला है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम गलत होते हुए भी हम उस चीज को प्राप्त करें जो कि असंभव है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय के 10 पद में लिखा है, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह फिर कहता है कि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने रोमियो के पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। मेरे मित्रों, ऐसा कहना उचित नहीं। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर गलत है तो सच यह है कि आप गलत हैं। परमेश्वर सदा सही है। आप और मैं ही हैं जो सदा गलत हैं। परमेश्वर कुछ भी करे वह सदा सही है। उसे ना तो आपको ना मुझे लेखा देना है। उसे कुछ भी करने के लिए ना आपकी और ना ही मेरी अनुमति की आवश्यकता है। यह बड़ी रोचक बात है कि आज ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं जो अपराधियों को अपने इच्छा से जीने का पक्ष लेते हैं, परंतु वे परमेश्वर को स्वतंत्रता से अपनी इच्छा के अनुसार जगत का संचालन करने नहीं देना चाहते हैं। मेरे मित्रों, वह उचित रूप से संचालन करेगा। वह आपके और मेरे मानकों से बंधा हुआ नहीं है। जी हाँ, वह स्वतंत्र है। या तो इस प्रकार से कहने वाली बात हो गई कि कुम्हार से मिट्टी कहता है कि मुझे ऐसा मत बनाओ, मुझे वैसा बनाओ, मैं राजमहल में रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा संभव है कि मिट्टी कुम्हार से कहे कि मुझे ऐसा मत बनाओ, वैसा बनाओ? बिल्कुल अनहोना है। जी हाँ, आज हम उसकी सृष्टि हैं और मुझे और आपको चाहिए कि उसकी उन भले और उत्तम बातों को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। हम अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 11 पद में आगे पढ़ते हैं, वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर न्यायी है और जो कोई भी गलत करता है वह उसे न्याय से ही चुकाता है। वह नहीं चाहता कि दुष्ट व्यक्ति जीवित रहे। यदि दुष्टता की है तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। हम बाइबल में बहुत से परमेश्वर के भक्तों के बारे में देखते हैं। दाऊद राजा, उसने पाप किया और उसको उसका प्रतिफल भी मिला। इसी प्रकार से हम जितने भी परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसका उन्हें न्याय दिया। आज मेरे और आपके जीवन में भी यदि कुछ ऐसी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, तो निश्चय जानिए कि उसका फल भी मुझे और आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन इस बात को भी स्मरण रखें कि जब हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने में मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसे क्षमा मांगते हैं, तो वह मुझे और आपको क्षमा करता है। मेरे प्रिय मित्र, आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और इस बात को जान लें कि वह मुझसे प्रेम करता है, मेरी चिंता करता है। मुझे इसलिए उसने इस परिस्थिति में रखा है ताकि मैं उसको और अधिक नजदीकी से जानूं, कि वह मुझसे अधिक प्रेम करे। क्या आप ऐसा करते हैं? मैं नहीं जानता आपके बारे में कि आप इस समय किस परिस्थिति में हैं। हो सकता है कि आप बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। मेरे मित्र, आप निराश मत होइए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपकी चिंता करते हैं और वे चाहते हैं कि आप इससे बाहर आ जाएं। अय्यूब के जीवन में उसने इस परिस्थिति को आने दिया ताकि वह उसके घमंड को दूर करे। इतना ही नहीं, वह उसको और भी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। जब हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंचेंगे तो हम उसे देखेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज आपने इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आइए आज हम फिर से अपने आप को अय्यूब की इस पुस्तक और इस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में रखें और जांचें और देखें कि मेरा जीवन किस प्रकार का जीवन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरों को दुखित कर रहा हूँ या दुखित कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पापमय जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मेरे मित्र, आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक अवसर है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सब की सहायता करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आपने हम सबसे बातचीत किया है। अय्यूब के जीवन से आपने हमें सिखाया है कि हम आपके निकटता में आ सकें। इस समय हमारी प्रार्थना है प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है अय्यूब की पुस्तक से, उसके जीवन से। पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि हमारे भाई बहनों की स्थिति क्या है, लेकिन मेरी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, जो बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया है कि उनके बीमार की कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को स्पर्श करें, उनके हर एक पाप अपराधों को जो उन्होंने किया है आप क्षमा करें, उन्हें शांति दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, ताकि हर एक जीवन आपको धन्य कहने पाए। इस वक्त फिर से एक बार प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पिताजी आप हम सबको आशीषित करें, हम सबकी सहायता करें, ताकि हम और भी अधिक आपसे प्रेम कर सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु। सागर में जीवन नैया,
भव सागर में जीवन नैया,
डगमग डोले, डगमग डोले। निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे।